ओके, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इक्टायोसिस की हिस्ट्री को। ऑल्दो ये बहुत ही कॉमन लॉन्ग केस नहीं हो सकता, बट स्टिल अगर आपके पास इक्टायोसिस लॉन्ग केस में आ जाता है देन यू शुड नो कि आपने हिस्ट्री में कौन से पॉइंट्स कवर करने हैं। वैसे तो शॉर्ट केस के अंदर जब हमारे पास पेशेंट इक्टायोसिस का आता ही है और एग्ज़ाम में भी आ सकता है, तो उसमें भी जब हम हिस्ट्री लेंगे तो आपने अपने माइंड में उन स्टेप्स को और उन सिस्टम्स को अपने माइंड में रखना है जिसके इक्टायोसिस की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। तो इस तरह जो है वो हमारे पास जो है वो लॉन्ग केस भी प्रिपेयर हो जाएगा और शॉर्ट केस भी प्रिपेयर हो जाएगा। तो इक्टायोसिस वी नो कि इट्स अ जेनेटिक डिसऑर्डर जिसके अंदर बॉडी के ऊपर स्केलिंग होती है। अब स्केलिंग की टाइप जो है ना वो डिफर कर सकती है फ्रॉम केस टू केस। उसके अलावा अंडरलाइन जो है वो स्किन नॉर्मल हो सकती है, एटॉपिक चेंजेस हो सकती हैं जिसमें स्किन विल बी वेरी ड्राई, और इसके अलावा अंडरलाइन एरिडीमा हो सकता है विद और विदाउट ब्लिस्टर फॉर्मेशन। तो उसके साथ तो इस वजह से जब हमने स्केल्स और एरिडीमा देखा और पेशेंट ने हमें क्वेश्चन बताया अपनी कंप्लेंट्स में कि छिलके बनते हैं, तो आपने इन चीज़ों को माइंड में रखते हुए देखना भी और क्वेश्चंस भी करने हैं। उसके अलावा इक्टायोसिस में हमने देखा है कि इसमें अपेंडिजियल इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, लाइक द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द हेयर नेल्स, उसके क्वेश्चंस एसोसिएटेड विद एनी। अब डिपेंड करता है कि वो सिंड्रोमिक इक्टायोसिस है या नॉन सिंड्रोमिक इक्टायोसिस है। अगर नॉन सिंड्रोमिक है तो उसमें इट विल ओनली बी लिमिटेड टू द स्किन, तो उसमें स्किन अपेंडिजेस और म्यूकोसल सर्फेसिस को हमें अच्छी तरह से देखना है। लेकिन अगर सिंड्रोमिक होगा तो उसमें फिर हमें सिस्टम्स को भी इवेलुएट करना पड़ेगा, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो सिस्टम्स की इन्वॉल्वमेंट होती है वो यूजली मस्कुलोस्केलेटल इन्वॉल्वमेंट है, न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट है, और उसके अलावा अगर तो वो न्यूट्रल लिपिड डेपोजिशन डिसऑर्डर्स हैं तो उसमें फिर हेपेटोस्प्लीनोमेगैली वगैरह हो सकता है। और यूजुअली हमने देखा है कि ऐसे पेशेंट्स में रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शंस या स्किन इन्फेक्शंस होते हैं, तो इस वजह से जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसकी भी इंक्वायरी इंपॉर्टेंट होती है।